Jema, Sri Arvind के योग की एक भूमिका यह है कि 1910 से 1920 के बीच में उस दशक में उनको एक योग का प्रोग्राम मिला था जिसकी चर्चा वो करते हैं अपने बरिन को लिखे हुए पत्र में कि एक नए योग का प्रारंभ होना है, एक नए योग को धरती पर प्रकट होना है और उनको वो प्रोग्राम मिलता है जिसके 10 लिंब 10 अंग बताए गए हैं। कहीं पर भी स्पष्ट रूप से ये 10 अंग कौन से हैं श्री अरविंद ने कहीं इसकी बात नहीं कही है, लेकिन अगर हम बाद में देखते हैं तो रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में जो उनको पूरा उन्होंने इस योग के जो अलग अलग चातुष्टय हैं उसी की बात है। तो ये इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते श्री अरविंद धरती पर एक नया योग प्रकट करते हैं और वो पथ संसार के सामने वो रखते हैं। वो पथ क्या है वो रखते हैं मुख्य रूप से जो उनकी 1914 से 1921 तक की जो राइटिंग्स हैं, इसको आज हम कलेक्टेड वर्क्स या ऐसे BCL के रूप में जानते हैं। और हम एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे ग्रंथ होते हैं हमारे यहाँ, श्रीमद् भगवद गीता है, वेद हैं, उपनिषद हैं, गुरु ग्रंथ साहब हैं इत्यादि, जो हर एक रिलीजन में एक ग्रंथ होता है जिसको पढ़ के कुछ लोग आध्यात्मिक चेतना में उड़ जाते हैं, उन पर ध्यान करके मेडिटेट करके। उस समय के कुछ पत्र भी हैं क्योंकि आर्य के माध्यम से कुछ लोग श्री अरविंद को पत्र लिखते थे और श्री अरविंद उसका उत्तर देते थे। तो अब उस समय के अगर हम दशक को देखें तो ग्रंथ है, गुरु के रूप में स्वयं श्री अरविंद है, लेकिन उस समय के पत्रों में प्रायः श्री अरविंद गुरु की जब बात करते हैं तो वो अंतर्यामी जगत गुरु, वो जो तुम्हारे अंदर में बैठे हैं डिवाइन, उनसे कॉन्टैक्ट करने के, उनके प्रदर्शन से, उनके पत्र दर्शन से आगे बढ़ना, ये मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि योग का प्रथम उद्घाटन। लेकिन श्री अरविंद ये जानते हैं कि ये सरल नहीं है क्योंकि उन्होंने उस साधना को करके, तपस्या को करके, और अपने एक पत्र में वो कहते हैं कि श्री माँ के विषय में कहते हैं कि श्री माँ के आने के पहले मैं तो ये साधना पूरी तरह कंप्लीट कर सकता था लेकिन इसको मनुष्यों के लिए करना कठिन है, ये वो कहते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य इतना अद्भुत है। और अगर हम सिंथेसिस ऑफ योग में देखें तो वो कहते हैं कि ओपन टू द डिवाइन, अगर हम लक्ष्य को देखें तो बहुत कठिन है, लेकिन मेथड के रूप में कहते हैं कि मेथड सबसे सरल है, वो है आत्मसमर्पण। लेकिन ये एक साधारण मनुष्य लगेगा क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हम डिवाइन के बारे में हमारी अलग अलग धारणाएं हैं, इम्पर्सनल है, सुपर पर्सनल, हम लोगों का मन भी बहुत खेल खेलता है और समर्पण इतना आसान नहीं होता जितना कि सुनने में लगता है। तो उस पर हम लोग आएंगे कुछ देर के बाद। अब माता जी के आने के बाद हम देखते हैं कि अब ये एक प्रकार से हम कहें कि इस योग की दूसरी प्रवेश द्वार खुल गया। श्री अरविंद चाहते थे कि ये योग कठिन है, इसका लक्ष्य अल्टीमेट है, कठिन इसलिए है क्योंकि इसका जो लक्ष्य उन्होंने रखा है वो एक ऐसा लक्ष्य है जो पहले तो सामूहिक लक्ष्य है, वो कोई इंडिविजुअल रियलाइजेशन मात्र पर रुकेगा नहीं। दूसरा है कि पार्थिव जगत की चेतना का रूपांतरण है, ये केवल एक व्यक्ति का रूपांतरण नहीं है, और इसका अर्थ ये हुआ कि जो संसार की सारी समस्याएं उनका समुचित समाधान एक नई प्रजाति के प्रकट होने से, ठीक वैसे जैसे मनुष्य के आने से, मनुष्य ने तो डिस्टर्ब ही किया है लेकिन पूरी सृष्टि का एक, पृथ्वी का बैलेंस, एक नया बैलेंस क्रिएट हुआ। तो अब ये एक नई प्रजाति से एक नया बैलेंस, लेकिन हैप्पीली डिवाइन बैलेंस, एक दिव्य संतुलन इस धरती के ऊपर आएगा और वो एक तरह से हमारे पार्थिव जगत की समस्याओं का परमानेंट समाधान होगा। तो ये सब उन्होंने किया अपने व्यक्तिगत जीवन में, वो कहते भी हैं बरिन को 1920 के पत्र में कि मैं 10 वर्षों के बाद इस योग में सुपर माइंड के प्रथम 3 उसके लेयर्स हैं सुपर माइंड के, जिसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, तो उसमें से जो प्रथम चरण है, प्रथम लेयर है, उसमें मैं प्रवेश कर रहा हूँ, उठ पा रहा हूँ। तो ये 1920 की बात है, आप सोचिए 1910 से लेके 1920 के बीच में, वो श्री अरविंद जिन्होंने निर्वाण सहज प्राप्त कर लिया, वासुदेवम सर्वम इति जो उनको कृपा के रूप में मिल जाता है, वो कह रहे हैं कि 10 वर्षों में मैं अब सुपरमाइंड की पहली लेयर पर उठ रहा हूँ, एक बार मैं इसको अपने अंदर पूरी तरह धारण कर लूंगा तो मैं सहजता से इसको बाकियों को दे सकता हूं। तो ये 1920 तक उन्होंने कोई डिसाइपल नहीं लिया, लेकिन उनकी पुस्तकें थी जो हमको उस दिशा में, पुस्तकों से भी ज्यादा आर्य के लेख थे जो उस दिशा में व्यक्ति को ले जा रहे थे। 1926 में उनकी व्यक्तिगत साधना एक प्रकार से पूरी हो जाती है, जितनी उनके उनके लिए आवश्यक था। सामूहिक चेतना का रूपांतरण तो किसी एक चेतना के रूपांतरण से नहीं होगा, वो एक सामूहिक कृत्य है। अब उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि ये बहुत कठिन है और कहीं ना कहीं माँ आती हैं उस समय 1920 से जुड़ जाती हैं, तो अमृतदा से एक वार्तालाप है जिसमें अमृतदा ये कहते हैं कि माँ बहुत ग्रेट योगी हैं, बहुत बहुत महत योगी हैं, लेकिन वे किसी को ध्यान नहीं देती हैं। शी वॉज नॉट गिविंग मेडिटेशन टू एनी वन कि मेरे साथ बैठ के। तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ, वो अधिकांश माँ अंदर ही रहती थी, बहुत कम बाहर निकलती थी, अपने कक्ष में रहती थी। तो श्री अरविंद कहते हैं कि हाँ, लेकिन एक दिन दिव्य प्रेम के वश वो बाहर आएंगी और वो दिन संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। तो ये काम होता है 1926 में, 24 नवंबर 1926, जिसके बाद माँ कहती हैं, माँ इसको अपने हास्यपूर्ण तरीके से कहती हैं, इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द मदर। तो अब उस समय के बाद श्री अरविंद ने ये छोड़ा नहीं, केवल माँ के आने पर उन्होंने वो विड्रॉ कर गए सुपर माइंड को उतारने के लिए, और उन्होंने माँ को ये सारा भार सौंप दिया। अब जब माँ को ये भार सौंप दिया, तब हम देखते हैं कि अब ये योग एक सेकेंड फेज, या हम ये भी कहें कि दो प्रकार से इसके दो द्वार खुल गए। एक द्वार है कि आप श्री अरविंद की रचनाएं पढ़ें, जो उनकी खासकर जो 1914 के बाद 20-21 जो आर्य की रचनाएं हैं, विशेष रूप से सिंथेसिस ऑफ योग, क्योंकि लेटर्स ऑन योग तो बहुत बाद में आते हैं, तो अगर आप उनको पढ़ें और दिव्य जीवन पढ़ें, आपका मन कितना तैयार है, कैसे उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसमें हिंट्स हैं, सजेशंस हैं, ल्यूमिनस हिंट्स हैं, लेकिन उसमें ऐसे टेक्निक, क्योंकि ये योग एक समुद्र में चलता है। ये श्री अरविंद स्वयं कहते हैं अपनी राइटिंग्स में, योग एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स एक पहली पुस्तक आती है श्री अरविंद की, बहुत शुरू शुरू की, 1913 की बात है, और उस समय वो कहते हैं कि इस जो अन्य अन्य योग हैं वो एक नहर की तरह है। अब नहर की तरह कि आप इधर से कूदे उधर निकले थोड़ी देर तैर करके, अब नहर में आप डूबते तो लोग नहर में भी हैं, लेकिन नहर में डूबना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि पानी का बहाव भी एक एक लिमिटेड वे में है और कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, आप नहा करके निकल सकते हो, तैरने का आनंद ले सकते हो। लेकिन यह जो योग है यह समुद्र की तरह है। और तब वो कहते हैं कि इस योग में सक्सेस के लिए चार चीजें आवश्यक हैं, और जो फोर एड्स के रूप में सिंथेसिस ऑफ योग में उसकी बात भी की है उन्होंने, और वो कहते हैं कि स्क्रिप्चर, जो पुस्तकें लिखी हैं उनका अध्ययन, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे हृदय के स्क्रिप्चर खुल जाना, वास्तव में ये स्क्रिप्चर्स जो पुस्तकें हैं उनके अध्ययन से हमारे हृदय के अंदर जो स्क्रिप्चर है, वेद छिपा है, वो खुल जाना। दूसरा वो कहते हैं गुरु, और कहते हैं गुरु तुम्हारे अंदर है, तो यानी ये देखिए कॉन्टैक्ट पॉइंट कितना कठिन है, गुरु हमारे अंदर है, हम लोग को आदत पड़ी हुई है कि बाहर से कोई हमको चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव हो। फिर वो कहते हैं कि हाँ, बाहर से भी तुम कोई मनुष्य जो आगे बढ़ा हुआ है इस योग में गुरु का रूप ले सकता है, लेकिन उस मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए कि वो केवल एक ही इज द एल्डर अमंग ब्रदर्स, यही है, ये नहीं कि वो कोई गुरु उस सेंस में बन गया है, क्योंकि इस योग में इसकी इसका कंसेप्ट ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि तीसरी चीज जो आवश्यक है वो शिष्य का उत्साह, और चौथी चीज कहते हैं काल, काल की गति। अब यहां पर वो कहते हैं, बताते हैं कि ये क्यों इस प्रकार से वो कह रहे हैं, कहते हैं कि अन्य योग में ये बताया जाता है कि आप ये प्राणायाम करो, ये मेडिटेशन करो, ये जप करो, ये सब करो, ये सब लिमिटेड विधि है, लेकिन इस योग में ये काम नहीं आती, करना चाहे कोई कर सकता है, निषेध नहीं है, कुछ भी निषेध ऐसे नहीं है, ये विधियां आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं, स्वयं कहते हैं श्री अरविंद, सनत सुजात का वो वर्णन करते हैं कि ये चार जो एड्स हैं, वो कहते हैं लेकिन वो सीमित योग में काम आती हैं। सीमित योग, आपको नहर क्रॉस करनी है, कोई बताएगा भैया यहाँ से पानी कम गहरा है, यहाँ पर कूद जाओ, थोड़ा हाथ पाँव चलाना, पहुँच जाओगे किनारे। लेकिन ये समुद्र की तरह है, तो समुद्र की तरह जब है तो वहां वो कहते हैं कि वो जहाज है जिस पर आपको बैठना है। अब वो बताते हैं कि ब्रह्म विद्या इज द शिप, अब वो आपको ब्रह्म विद्या तो उनके शास्त्रों से ही मिल रही है, वरना आप या तो ब्रह्म को रियलाइज करें, तो वो कहते हैं ब्रह्म विद्या वो जहाज है। फिर वो कहते हैं कि जब आप इसमें बैठोगे तो कंपास चाहिए, तो फेथ इज द कंपास। और तीसरा कि वो जहाज चलेगा ईंधन चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो डिवाइन शक्ति इज द ऊर्जा। अगर आप ये तीनों चीजें आपको मिल गई हैं, डिवाइन शक्ति है, श्रद्धा है आपके अंदर, श्रद्धा समर्पण, आप ऐसे समझ ले माँ के प्रति समर्पण डिवाइन शक्ति के प्रति, और श्रद्धा और आपका जहाज यानी ब्रह्म विद्या यानी स्क्रिप्चर अगर आपके पास हैं तो आप क्रॉस कर सकते हैं। वरना इसका कोई सिखाए हुए तरीके से इतनी बार जप करो, इतनी बार आप इतने घंटे बैठ के ध्यान करो, ये इस योग में ये चीज़ नहीं है। अगेन किसी कोई भी चीज़ निषेध नहीं है। अब जब ये हुआ तो फिर हम देखते हैं कि 1920 में 24 में इसके बाद श्री अरविंद के पत्रों का पूरा रुख बदल जाता है। तो 1927 में पहली बार दर्शन दिवस होता है, 21 फरवरी सबसे पहला, मतलब 24 नवंबर तो बाद में दर्शन डे हुआ ही, लेकिन 21 फरवरी पहला दर्शन दिवस होता है। उस समय श्री अरविंद एक पूरा लेटर लिखते हैं जो आज के समय माता पुस्तक का प्रथम चैप्टर है। तो पूरा जो चैप्टर है प्रथम, वो श्री अरविंद का पत्र है जो मैसेज कार्ड के रूप में दिया गया था। और उसमें क्या चीज वो बताते हैं कि ओनली टू थिंग्स आर नीडेड। अब मुख्य चीज क्या है? कॉल, अनफेलिंग कॉल एंड द ग्रेस, यानी उन्होंने तुम्हारी अभीप्सा और कृपा। अभी भी वो चीज इम्पर्सनल सी है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया कि डिवाइन मदर्स ग्रेस कौन है, इनको आपने योग का भार सौंपा है, ये कौन है, क्या कोई और माँ के प्रति आप समर्पण की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो माँ का बहुत व्रत रूप है, या इनकी बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं अंत में श्री अरविंद का छठा लेटर है जो मुख्यतः कपाली शास्त्री को, जो जी को लिखे हुए पत्र को उन्होंने एनलार्ज किया है कि जो बात कर रहे हैं वो मुख्यतः इन्हीं माँ की बात कर रहे हैं। द वन होम वी एडोर इज द डिवाइन मदर। अब वहाँ एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जब मैं कह रहा हूँ माँ के प्रति खुलना है, तो मैं डिवाइन मदर की, मदर जो यहाँ पर आश्रम में, उस समय आश्रम फॉर्म होता है कि जो आश्रम में जिनको हम माँ कह के बुलाते हैं, द वन हु वी एडोर एज द डिवाइन मदर, ये हाँ इज एज द मदर, एज द मदर इज द कॉन्शियसनेस फोर्स ऑफ द सुप्रीम। अब वहां वो पहली बार स्पष्ट करते हैं। कुछ पत्र और भी हैं जैसे अमृतदा को वो संकेत देते हैं नलिनीदा को कि ये हैं डिवाइन मदर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और वो कौन है उनके प्रति खुलना, सारा का सारा अगर तुम अपने आप को उनके प्रति उद्घाटित कर सको। और फिर उसमें मूल मंत्र भी देते हैं कि भाई माँ के प्रति जब तुम स्वयं को खोलोगे तो ये मत समझना, अवॉइड, वो कहते हैं कि मानव मन जैसी अपेक्षा करता है। मानव मन क्या कहता है? वो भगवान है तो चमत्कार। अब वो चमत्कार से क्या समझता है? मेरी इच्छाओं की पूर्ति। अब भगवान का तो ये दूसरा रूप है कि वो सब ले लेते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि भुजा उतार, उस समय नहीं लगता है बोझा है, आपको तो लग रहा है बहुत मजा है, ये मैं गठरी लेके जा रहा हूँ, इसी में मेरा सब कुछ है। वो मेरा भाई का वो है ना कि जब वो बाहर आई पैलेस के बाहर, महल के बाहर, उनको जब भेज दिया गया क्या एक प्रकार से निष्कासित कर दिया गया, तो कृष्ण जी की मूर्ति लेके आई थी सोने की, रात को चोर ने चुरा लिया। तो कहती ये क्यों ले लिया, यही तो मेरा आधार है। और तब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं कि ये आधार नहीं है, आधार तो ये देखो, अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। तो ये एक प्रकार से हम लोग जैसे भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, वो स्पष्ट करते हैं कि ये वाला संबंध जोड़ सकते हो, कोई इसमें निषेध नहीं है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्थ, आर्थी और आर्थ जुड़ सकते हैं भगवान से, निषेध नहीं है। लेकिन साथ ही स्पष्ट करते हैं स्वयं श्री कृष्ण की वो दोनों जो संबंध है ये योग के संबंध नहीं है। स्वयं कहते हैं कि दे आर इनफीरियर फॉर्म्स ऑफ रिलेशन। और जो योग के संबंध है वो जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार भक्त, प्रारंभ में ही जिज्ञासु भी भक्त है। भक्त कैसे? जिज्ञासु, अब यहां थोड़ा एक अंतर आता है कि कई लोगों को लगता है कि भाई हम किताब पढ़ रहे हैं तो हम योग नहीं। कौन आप किताब पढ़ रहे किस भाव से? भक्त के भाव से। भक्त जिज्ञासु भक्त कैसा होता है? जो जानना चाहता है, जिसको प्रेम करता है, जानता है कि यह मेरी नैया को पार करेंगे और प्रेमवश वो जानना चाहता है कि भाई ये कौन है डिवाइन मदर, ताकि मैं और अधिक उनकी इच्छा क्या है, कैसे मैं उनकी इच्छा को जीवन में उतार सकूं, वो मुझसे क्या चाहती हैं। इस प्रकार का जो भक्त है जिज्ञासु, जो उनके सारे विस्तार में जानना चाहता है, वो तीसरी कैटेगरी। और चौथा जो ज्ञानी है, जो जान चुका है कि हाँ ये तो डिवाइन मदर है। माँ जब इस योग की बात करती हैं तो वो प्रारंभ एक्चुअली फोर्थ कैटेगरी के भक्त से करती हैं, मना नहीं है। अगेन माँ कहती है यू कैन आस्क एवरीथिंग फ्रॉम मी, क्योंकि वो जगन माता है। किसी ने उनसे पूछा कि मदर व्हाट कैन वी आस्क फ्रॉम यू, शी सेज एवरीथिंग। माँ आप हमसे क्या अपेक्षा करती हो, माँ कहती नथिंग। तो ये तो स्पष्ट है कि हर लेवल पर। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है, अब इसका क्या, माँ का तरीका क्या है कहने का, जब माँ से किसी ने पूछा माँ आप योग में किसी को इनिशिएट नहीं करती हैं, कोई ऐसा नहीं कि आपने मंत्र दे दिया, शेरविन तो यहाँ तक कहते हैं कि आई डोंट गिव एनी मंत्र, वी डोंट गिव एनी मंत्र, वी गिव वर्क, काम देते हैं हम। और साथ में ये भी शेरविन के पत्र में है कि देर इज नो मेथड इन दिस योगा एक्सेप्ट टू टेक द मदर्स नेम एंड माइंड, और उस दोनों में कहते हैं कि माँ का नाम प्रधानता, लेकिन कभी कभी दोनों नामों का साथ में जुड़ना, और उसका पूरा विस्तार से वर्णन करते हैं क्यों आवश्यक है। तो लोगों ने माँ से ये पूछा कि माँ आप तो कोई बाहर से कुछ नहीं कहती इनिशिएट करती हैं, आप तो बस एडमिट हो जाता है आश्रम में, अब उसको तो पता भी नहीं इनिशिएट हुआ कि नहीं आश्रम में काम कर रहा है। तो माँ कह, श्री अरविंद का एक पत्र है बाय द वे, इसमें ये एसाइड माँ क्या कहती हैं वो थोड़ा सस्पेंस। तो श्री अरविंद कहते हैं ऑल हु आर टर्न टू द मदर आर डूइंग माई योगा। पहले तो उन्होंने एक व्यापक कर दिया कहीं पर भी संसार में। फिर आश्रम के काम के बारे में कहते हैं ऑल वर्क इन द आश्रम इज द मदर्स वर्क। क्योंकि लोगों के मन में यह आता था कि हम किसी साधक की तो सेवा नहीं कर रहे हैं, डाइनिंग रूम में बर्तन साधक खाते हैं तो हम उसको साफ कर रहे हैं, हम तो आपका काम करना चाहते हैं, एक से एक इंटेलेक्चुअल भक्त हैं। सो शेरविन ने कहा तुम तो फिर कहोगे कि मैं पत्र लिखता हूँ साधकों के साथ पत्राचार, तो मैं साधकों की सेवा कर रहा हूँ। तो लोगों की ये थॉट प्रोसेस होती है, कहते हैं ऑल वर्क इन दी आश्रम। बाद में आश्रम को उन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन किया है, माने कि जहाँ कहीं भी ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स हैं जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ आश्रम का एक्सटेंशन है। खैर माता जी से किसी ने पूछा माँ आप इनिशिएट नहीं करती हैं, आप तो काम दे देती हैं, तो हम कैसे जाने कि हम योग में एडमिट हुए हैं कि नहीं, इनिशिएशन का कोई तो लक्षण होना चाहिए। तो माँ कहती है व्हेन आई से आई हैव इनिशिएटेड समवन इट मीन्स आई हैव रिवील्ड माई सेल्फ टू दैट पर्सन। अब इतनी घटनाएं मेरे खुद के लाइफ में, मैं जानता हूं कई लोगों के जीवन में होंगी, कि आपके अंदर अचानक ये जागृत होती कोई चीज कि ये डिवाइन मदर है, इन्हीं की बात हो रही है, आपके मन में डाउट नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये बिना रेवलेशन के नहीं आ सकता, आपको कोई कितना भी समझा दे। मेरे साथ तो बहुत ही वो हुआ है, शेयर कर रहा हूं, सबके जीवन में है बट जस्ट शेयरिंग। कलकत्ते में हावड़ा में मैं ट्रेन पकड़ने वाला हूँ, 10 मिनट का समय है, फिर मैं सोचता हूँ जाऊँ श्री रामकृष्ण परमहंस, वहाँ स्टॉल था हावड़ा में, वहाँ से कोई किताब ले लूँ। तो वहाँ जाके मैं स्टॉल में, उस समय आई हैड माँ का एक वो हो गया था मुझे, मतलब फोटोग्राफ उससे एक कि हाँ यही है, श्री अरविंद की पुस्तक थी। तो मेरे मन में आया कि माँ की, माँ का कुछ मैं पढ़ूँ, उस समय तक माँ का कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। तो मैं गया तो वहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस का स्टॉल था, तो मैंने कहा एक बार पूछ लूँ इनके पास जनरल बुक्स भी और भी बुक्स होती होंगी। तो मैंने पूछा उनसे कि माँ की कोई किताब है, तो उन्होंने कहा नहीं माँ के तो कोई किताब नहीं है, एक किताब है। तो मैंने कहा कौन सा, तो जस्ट इमेजिन श्री रामकृष्ण परमहंस के स्टॉल पे उन्होंने मुझे श्री अरविंद की दी मदर पुस्तक छोटी सी पकड़ा दी। मैंने लिया, कुछ नहीं देखा कि माँ की लिखी, मैं ढूंढ रहा था माँ की लिखी हुई कोई पुस्तक, पर श्री अरविंदो दी मदर का नाम है, मतलब माँ ने लिखी होगी, लेके भागा बिकॉज ट्रेन चलेगी, और जनरल कंपार्टमेंट कोई बुकिंग नहीं, वहाँ बैठ गया। अब मैंने किताब पढ़नी शुरू की, राइट पहले पेज से मैं स्पष्ट हूँ कि वो जो माँ जिनके बारे में मैंने अब तक जो भी थोड़ा बहुत चित्र देखा है ये उन्हीं के बारे में है। एक क्षण को भी वो आए नहीं कि ये श्री अरविंद किस माँ के बारे में लिख रहे हैं, एकदम स्पष्ट था। तो इसको कहते हैं कि अंदर से कोई चीज आपको रिवील कर देती है। माँ कहती व्हेन आई से आई हैव इनिशिएटेड समवन इट मींस आई हैव रिवील्ड माय सेल्फ टू दैट पर्सन। तो अब ये क्या है, ये हो गया ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त कौन है, वो जानता है, क्या जानता है कि ये भगवान है। अब वहां से लंबी यात्रा, और इसी बात को श्री अरविंद एक और जगह कहते हैं, जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने इसको अलग ढंग से सीखा। मुझे ये लगता था कि काम जो तुम्हारा स्वधर्म है, क्योंकि गीता का एक छाप थी, वो कार्य करना ही भगवान का काम है। तो आश्रम में तो आपको उल्टा काम दे दिया जाए, कभी उल्टा मतलब आपको, मुझे तो फर्नीचर डिपार्टमेंट, फर्नीचर नहीं, मार्बलिंग सेक्शन में काम मिला। कई लोगों को अलग अलग ऐसे काम मिलता है। तो निरुद्धा को टिम्बर गोडाउन में काम मिला। तो दिमाग में वो स्वधर्म की बात थी। तो किसी ने मुझे ये बताया कि नहीं, स्वधर्म का जहां गीता एंड करती है स्वधर्म को, वहां से श्री अरविंद का योग शुरू होता है। तो मैंने कहा अच्छा, वो पढ़ू मैं श्लोक, ये शुरू के दिनों की बात है। तो मैंने गीता का जो अंत में श्री कृष्ण निर्देश देते हैं, सब बताते हैं, स्वधर्म स्वभाव सब कुछ बता देते हैं, कुछ बचा नहीं है। अंत में जो श्री कृष्ण निर्देश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मां सुचा, कहते हैं बाकी तू कर तेरे हिसाब से, लेकिन ये उसका फाइनल इंस्ट्रक्शन है अर्जुन के लिए। देन आई रियलाइज कि हाँ, ये तो आप जो स्वधर्म, उसको भी आपको समर्पण करना है। और देखिए, पांडवों के साथ ये प्रिपरेशन की थी श्री अरविंद ने, बाद में वो मीनिंग स्पष्ट हुआ कि भीम रसोईया बनते हैं युद्ध के पहले, अर्जुन ब्रहलनला बनते हैं, ये सब न्यू क्रिएशन के बीइंग्स हैं, क्योंकि उस समय के न्यू क्रिएशन, एक भी नॉर्मल सेक्सुअल प्रोसेस से जन्म नहीं लेता है, मतलब वो है लेकिन दे आर ऑल डिसेंट्स। तो वहां पे कंप्लीट समर्पण, उसके बाद की तैयारी। और ये पहले ही जो काम है, इसमें बड़ी कठिनाई होती है कई लोगों को आश्रम में, क्योंकि वो ये भाव से हम आते हैं। कई बार लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि मैं आश्रम ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरी टीचिंग में ये सब मेरा, कभी कभी रेज्यूमे लेके आते हैं कि मैंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, ये क्वालिफिकेशन है, ये है, अब मैं आश्रम ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ बहुत पढ़े लिखे हो आप, तो आश्रम में क्या काम करोगे? कहते हैं कि मैं टीचिंग स्कूल में, सबको टीचर बनना है। मैंने कहा भाई देखो, ऐसे नहीं होता है, वहाँ वो कहाँ आपको भेजेंगे, आप तैयार हो तो ठीक है। अगर ये लॉजिक लेके जाओगे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे सिखाने ही है, सीधा टेबल चेयर का जॉब चाहिए, तो फिर वो यहाँ वो नहीं है। तो ये प्रारंभ वहाँ से होता है, जहाँ माँ इनिशिएट करती हैं कि वो डिवाइन मदर हैं। और दूसरा, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो आप मुझे काम दोगी वो मैं करूँगा, इस भाव से, इस लगन के साथ कि ये आपका काम है। अब ये जो यात्रा शुरू होती है, तो वहां पे ये सेकंड चीज श्री अरविंद ने बताई कि माँ के प्रति खुलना, दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्ट्स। एक है किताब पढ़ी, प्रयास किया, श्री अरविंद मना नहीं कर रहे हैं, पर वो कहते हैं ये बहुत कठिन है, लोग हैं जो नहीं समर्पण कर सकते हैं, वो उनको करना है ऐसे कि भाई हम स्क्रिप्चर पढ़ के, तो ठीक है, मना नहीं है, लेकिन ये दूसरा उन्होंने एकदम ईजी रास्ता खोल दिया। विल कम बैक टू इट। लेकिन अब ये हुआ कि लोगों को समर्पण करना, ये भी बड़ा कठिन है, दुनिया भर के लोग हैं, संसार में लोग हैं ऐसे ऐसे। तो अब वो थर्ड लेवल पे श्री अरविंद इस योग को और थोड़ा सा सरल, माँ के प्रति खुलना सबसे सरल है लेकिन सबसे सहज नहीं है। तो उन्होंने तीसरा जो इसको, क्योंकि एक द्वार खोला इस योग में, एंट्री पॉइंट, और वो द्वार खोला सावित्री के माध्यम से। तो सावित्री के माध्यम से माँ कहती हैं कि इसको तुम पढ़ोगे तो सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस के प्रति खुल जाओगे, खुल नहीं जाओगे, पहुंच जाओगे। माँ कहती हैं इट विल टेक यू टू द हाईएस्ट सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए उन्होंने कहा इट इज द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर तुम केवल सावित्री को पढ़ोगे गहराई से उतर करके इसमें, वो एक अलग विषय अपने आप में, तो तुम सुप्रामेंटल रूपांतरण की तरफ जा सकते हो। अब श्री अरविंद के योग में देखिए, जैसे बुद्धिज्म में निकला ना महायान तेरवाद, तो श्री अरविंद ने ये तीसरा, और कई लोगों को मैं जानता हूं जिनकी केवल सावित्री स्टडी सर्किल है, और ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो मेक्सिको में बैठा हुआ, जो केवल सावित्री पढ़ के, एक लेडी जो कहां डिप्रेशन में सुसाइडल थी, और उसके हाथ में सावित्री आ गई, वो रोड साइड में कहीं स्टॉल पे कोई रद्दी में दे गया था और उसको मिल गई और उसका जीवन बदल गया। आई हैव मेट दिस लेडी, और उसको मैंने कहा बाहर मिला था, मैंने कहा आश्रम में, बोल नहीं मुझे आवश्यकता ही नहीं लगती है, सब कुछ मुझे सावित्री से प्राप्त हो रहा है। तो इन्होंने ये भी एक द्वार खोला, लेकिन सावित्री का अपना एक, ठीक है, जो माँ से जुड़ने का एक बड़े कई लेवल्स पर हम जुड़ सकते हैं, माँ तो माँ है। तो चौथा फिर माँ और भी इसको सरल कहती, कहती ये सब ठीक है लेकिन अब मैं अति मानसिक चेतना को स्थापित कर दूंगी। श्री अरविंद से किसी ने यह प्रश्न किया था कि आपने कह दिया है माँ के प्रति खुलने के लिए, तो ये फिर आप सुप्रामेंटल के प्रति पीछे क्यों पड़े हुए हो कि सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, सुप्रामेंटल डिसेंट, इसकी क्या आवश्यकता है? तो श्री अरविंद का उत्तर चौंकाने वाला है कि ये पिछले बार मुझे स्मरण है कि इसकी बात मनोज भाई ने भी की थी, कोई आई थिंक फरवरी में हम लोग पढ़ रहे थे तब पॉलिटिया मैगजीन में ये था। तो कहते हैं कि हर व्यक्ति नहीं खुल सकता है माँ के प्रति, ये सौभाग्य है, कृपा है, उनके लिए मैं सुपर माइंड उतार रहा हूं। अब देखिए कि सुपर माइंड जब उतर जाता है अब वो तो अपने इम्पर्सनल तरीके से काम कर रहा है। आप मानते हो या नहीं मानते हो, जानते हो या नहीं जानते हो, योग में मुड़े हो या नहीं मुड़े हो, अब वो तो चेतना है, वो तो काम करेगी। सूरज ये नहीं पूछता है कि भैया तुम लोगे मेरी धूप कि नहीं लोगे, वो ताप बढ़ाएगा, आप अंदर छुपेंगे तो भी गर्मी लगेगी आपको। आप कितने भी एसी लगा दोगे पर सूरज का ताप है, वो काम कर रहा है अपना कहीं ना कहीं आपके जीवन में। तो उन्होंने सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, ये चौथा एक तरीका जहां कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता इस योग से, वो भी अब पूरा संसार कहीं ना कहीं इस पर चल रहा है, चलाया जा रहा है। और पांचवा जो, और भी बहुत कुछ है लेकिन पांचवा जो माने ये देखा कि ये तो सुपर माइंड उतर गया है, मनुष्य के लिए बहुत कठिन है ये इतना, फिर भी ये तो मतलब माँ कहती केओस हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, क्यों? क्योंकि ये तो सत्य चेतना है, अब आ तो गई है, मनुष्य तो झूठ की परतों में लिपता है। अब बहुत कम है जो इतने फॉर्चुनेट है कि भाई वो समर्पण करके माता जी के प्रति खुल सके। तो सुपर माइंड तो मतलब सत्य की चेतना है, वो तो कोई आपके मापदंड मानसिक धारणाएं इसका कोई अकाउंट नहीं, वो तो अपने ढंग से कार्य करेगी टुवर्ड द ट्रूथ जो मैनिफेस्ट करना है। तो माँ 1956 के बाद जब वो कंटिन्यू करती हैं, हालांकि वो कहती हैं कि अब मेरा औचित्य नहीं है धरती पर रहने का, 1962 में जब डिवाइन लव को, दिव्य प्रेम को स्थापित करती हैं, कहती माँ अब ठीक है, ये कुशन का काम करेगा, जब लोग गिरेंगे बुरी तरह चोट लगेगी तो ये डिवाइन लव कुशन का काम करेगा। ये सब स्थापित करने के बाद और बहुत कुछ होता है, खैर माँ विड्रॉ करती हैं फिजिकली। तो अब हम देखते हैं कि इस योग में कितने सारे द्वार खुले हैं, कम से कम चार द्वार खुले हैं, और इन सभी द्वारों में से जो सबसे अधिक मधुर है, सबसे अधिक सरल है, एक लेवल पर सहज भी है, वो है श्री माँ के प्रति उद्घाटन, श्री माँ के प्रति खुलना। क्योंकि यहाँ पर आपके सारे नियम कायदे कानून खत्म हो जाते हैं। माँ के पास बच्चा जाता है तो वो ये नहीं कहता है कि माँ मैं किस तरह से आऊँ। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई माँ को याद करना, माइंड है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमको कैसे करना है। तो मैंने पूछता हूँ कि भाई माँ के पास, तुम अपनी माँ के पास जाते हो, ये प्रश्न उठाते हो मन में कि मैं क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं। माँ एक जगह ऐसे कहती हैं, माई चाइल्ड, लोग आके समाधि पर एकदम जैसे साधु बच्चा बन करके, तो माँ कहती व्यक्ति पूछता है लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी दुर्भावनाएं भी बाहर निकल के आती हैं, ऐसे से विचार आते हैं जो नहीं आने चाहिए। माँ कहती है और कहाँ आएंगे? तो कहते हैं क्या मतलब? कहते हैं मेरे सामने तो तुमको इनको प्रस्तुत करना है। अब देखिए, अब यहां पर पहला सूत्र मिलता है कि खुलने का क्या अर्थ है। खुलने का अर्थ केवल यह नहीं है कि मैं अंदर नाम जप कर रहा हूं, दैट इज वेरी पावरफुल, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। मैं एक साधु बच्चे की तरह हूं, मुझे मालूम ही नहीं मेरे अंदर क्या हो रहा है, मैं माँ के प्रति खुला हूं, क्यों? मैं आश्रम जा रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं चित्र को और मैं अंदर नाम जप कर रहा हूं। खुलने का मतलब है लेइंग बेयर एवरीथिंग, बेझिझक। माँ कैसे, माए जब निलाती हैं बच्चे को, देखिए गंदगी में भी लौट के आता है बच्चा, तो कोई माँ ये नहीं कहे गंदगी में आया जा तू कहीं और, नहीं ना करेगी, कम से कम ये इंडियन मदर्स तो नहीं करेंगी अभी भी। वो ले जाएंगी, बच्चा रो रहा है, माँ क्या कर रही है, पहले तो नहा, कपड़े उतार रही है, बड़ा भयानक होता है, इसका नाम है योग की नग्न अवस्था। आपने बड़े अच्छे कपड़े पहन के आए कि हम योग साधना करेंगे, सफेद सफेद कपड़े, और आप भगवान कहते हैं ये सफेद कपड़े उतार तेरे अंदर जो काले 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 धब्बे हैं उनको दिखा। ये होता है, लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, भागने लगते हैं इधर उधर, क्योंकि हम सब आते हैं अपने एक मेंटल आइडिया से, आई एम दिस, आई एम समवन। तो मैं कहती अभी बच्चा है ना, मैं बताता हूं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनकी शक्ति जो सती अरुंधति की कहानी है, बच्चे की तरह नग्न करके अपने जंगा पे बिठा के भोजन करा दिया, और वो तो मात्र सती अरुंधति की है, अत्रि ऋषि की पत्नी, तो आप सोचिए जगन माता की क्या शक्ति है। और माँ ने जब ये पिक्चर देखी, ये फिल्म आई थी प्लेग्राउंड में, माँ कहती है बहुत हंसी, बहुत प्रसन्न हुई, बोली बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और फिर वो कहती है ये शक्ति कहाँ से आई उस सती के अंदर, माँ कहती है ये प्रेम की शक्ति है, केवल मनुष्य ही है जिनके अंदर प्रेम इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली होता है कि वो देवताओं को भी विवश कर दे। अब इस कहानी में क्या उद्घाटित हुआ कि इन लोगों के अंदर ईर्ष्या थी, देवियों के अंदर, उनके अंदर भी ईर्ष्या थी, टेस्ट करते कर रहे हैं। माँ टेस्ट नहीं करती, कुछ लोगों का ये विचार है कि माँ हमारा टेस्ट लेती हैं। माँ कहती माई चाइल्ड आई डोंट, मैं टेस्ट लूंगी तो कौन खड़ा रहेगा, मैं जानती हूँ तुम लोगों को। तो फिर माँ आप जानती हैं तो हमें ये बताने की क्या जरूरत है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। माँ कहती है ये जानने को कि तुम कितना जानते हो अपने आप को। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं जानते अपने अंदर तो हमने कोई चीज परतों में छिपाई है, तो क्या माँ भेद नहीं कर सकती? भेद सकती है, बहुत पीड़ा होगी, भयंकर पीड़ा होगी जब वो दिखाएंगी ना, साधु बच्चे देख अंदर तेरा क्या हाल है। इसलिए वो चाहती है कि हम स्वयं उद्घाटित करें। कितनी कहानियां है माता जी की, एक सेक्शन में जब यहाँ पे माँ आई चेक कर, बीच बीच में आ जाती थी अलग अलग डिपार्टमेंट, तो पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट था मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उस डिपार्टमेंट जब माँ गई तो पता चला कि माँ आ रही हैं। तो अब लोग तो हाँ प्रेस, अब लोग तो माँ आ रही हैं जल्दी जल्दी, माँ तो मतलब सब अच्छा होना चाहिए, उन्होंने उठा करके सब सब कुछ जो डंप टाइप की चीज़ें थी एक अलमारी में बंद कर दी, यही हम लोग करते हैं। माँ आई सब एकदम बड़ा सुंदर दिख रहा है, माँ सीधा कबर्ड में जाती हैं और खोलती हैं, इसी का नाम दिया है स्केलेटन्स फॉलिंग आउट ऑफ द कबर्ड। इसकी पूरी कहानी है वैसे शिव पुराण में, स्केलेटन्स कमिंग आउट ऑफ द कबर्ड, पर अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो खोलती हैं तो सारी जो चीजें उन्होंने उठा के ऐसे ही रख दी थी वो गिरती हैं। अब वो जो लोग थे उनको बड़ा बुरा भी लग रहा है, कहते माँ आपको कैसे पता चला? कहती ये चिल्ला चिल्ला के मुझे कह रही थी, देखो मुझे, देखो मुझे, देखो मुझे, मैं वहां चली गई। अब ये चीज, अब खुलने का अर्थ है कि ये हम साधु बच्चे होके एकदम नीट ड्रेस पहन के, खुलने का अर्थ है जो हमारे अंदर है जैसे है उसको बिना लाग लपेट, ये फर्स्ट है, बड़ा कठिन होता है मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य क्या करते हैं, हमारी एक आदत हो गई है खुद को जस्टिफाई करने की, जो मेरे अंदर विचार उठेगा, जो मेरे अंदर भावनाएं उठेंगी सब सही है, और जो मेरी पत्नी के अंदर उठ रही हैं या पति, सॉरी पति के अंदर उठ रही हैं या बच्चों के अंदर, इनके सब के अंदर, ये सब गलत है, मैं सही हूं, ये क्या है? ईगो है और कुछ नहीं है। उसको बड़े अच्छे से हम लोग वो कहते हैं ना, ब्रेड में बटर और जैम लगा के, ब्रेड खराब हो गई है लेकिन आप खिला तो वही रहे हो, खराब ब्रेड में आपने बटर जैम लगा दिया, तो जो कनोइजर है ब्रेड का वो तो जान गया भाई ये नहीं है असल चीज। तो हम लोग ये कवर अप करने में माहिर हैं, और माँ की जो दृष्टि है इस मामले में, ऐसे ऐसे लोगों के अनुभव हैं, माँ ने देखा किसी को कहीं पेन हो रहा था, माँ वो कहते हैं माँ ने जो देखा तो अंदर तक जैसे चुभती हुई कोई चली गई कटार, एकदम पांव तक चली गई, असहा वेदना से वो लेडी कांपने लगी, नाम नहीं लूंगा अभी भी जीवित हैं, बहुत असहा वेदना। फिर माँ ने अपनी दृष्टि बंद की तो उसको समझ आया कि मेरे अंदर क्या चीज है। छोटे नारायण जी का सब लोग परिचित हैं, वो खुद बता रहे थे उनके अंदर बहुत भय होता था, वो कहते मेरी यही प्रॉब्लम थी भय, हम बहुत डर जाते थे तो जब नैने आए उनको भय का भूत, वो सारे राक्षस असुर देखें, रोज रात को कभी खून पी रहा है छाती से इधर से उधर से, तो 10-15 दिन तो चुप रहे। आए नए आश्रम, आप चाहते हो कि हम बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस हो। तो फिर 10-15 दिन उन्होंने माता जी को कहा, माँ हम रोज रात को ये सब देखते हैं, हमको बहुत डर लगता है। माँ कहती, इफ यू आर सो अफ्रेड यू कैनॉट डू दिस योगा। अब वो कहते हैं, अब हम क्या करें, वहां असुर राक्षस, यहां माँ ने डांट दिया, अब मैं करूं क्या। थोड़े दिन चुप रहे, फिर जाके उनको फोड़ा हो गया पांव में, क्योंकि वो अब फोड़े का भय शुरू हो गया। फिर माँ के पास गए, कहते माँ ने जो मेरे देखा अंगूठे के ऊपर जिस पर वो फोड़ा था, इट वॉज हर वे ऑफ ब्रिंगिंग आउट द एंटायर थिंग ऑन वन स्पॉट। कई बार ये होता है, वो एक अलग विषय है कि कभी कभी हमारी बहुत सी कठिनाइयों को किसी एक तरीके से शमन करते हैं भगवान। वो कभी कभी एक बीमारी का रूप ले लेगी या कोई हल्के से उसका, तो वो शमन होता है आपका। प्लीज बीमारी हो तो ये मत लीजिए कि भाई मतलब ये एक वो तरीका है भगवान का, नॉट अबाउट एवरी डिजीज। तो वो उन्होंने जो देखा उनके पाँव पे, तो अब उनके पूरे देह में आग लग गई। कहती इतनी आग कि मैं नहाऊं कितनी बार वो आग ना बुझे। अब वो रोज आके, फिर अंत में उन्होंने माँ को कहा कि माँ नहीं सहन हो रहा है। माँ ने कहा यू गो। अब कहते अब हम क्या करें, हमारे पास तो जाने के पैसे भी नहीं है, और किसी को अचानक कोई आया और उसने पैसा अरेंज हुआ, टिकट अरेंज हुआ। कहते यहां से मैं गया चेन्नई तक पहुंचा, 50% चला गई जलन। पटना पहुंचा, 75% चली गई। गांव तक गया, सब चली गई। तो ये कहानी, और ऐसी कई कहानियां हैं। ये कहना कि आई ओपन टू द मदर बोलने में बहुत आसान है, आपको तैयार रहना है, प्रस्तुत रहना है। इसीलिए माँ से किसी ने पूछा कि आप महाकाली का करके क्यों नहीं एक झटके में सब हटा देती हैं। कहती मैं नहीं यूज करती हूँ, बहुत कम ऐसे साधक है जिस पर मैं महाकाली का तरीका अपनाती हूँ। तो किसी ने पूछा क्यों, ये तो बड़ा अच्छा है, सरल सहज एकदम फ्रंटल स्ट्रोक। तो कहती हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम नहीं है उन पर नहीं उपयोग करती हूँ, बहुत कांप जाते हैं लोग, सहन नहीं कर पाते। अमृतदा, चंपकलाल, ये 2-3 लोग हैं। और माँ ने एक बार कहा, जब चंपकलाल जी ने से बोला हाँ मैं चंपकलाल जी जैसा बनना चाहता हूँ, कहती सच में, बोला हाँ। कहते तुम पहले उनसे पूछो कि उनको कितना कठिन है मेरे पास मेरे साथ कार्य करना। और क्योंकि और यू बिकम सो कॉन्शियस, वो कोई चीज है जो आपके कहते हैं ना नस नस को खोल देती है, इसको बोलते हैं खुलना, बिना किसी कवरिंग के। ये सारे कवरिंग तो असुर हैं, इनके नाम हैं 4 दस्यु जो हैं, जो असुर हैं, जो जिनकी बात ऋग्वेद में हुई है, उसमें एक क्या है कवरर, दूसरा क्या है टेरर। देखिए एक असुर क्या करता है, कवर करता है, शील्ड बनाता है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत साधना कर रहा हूँ, मैं तो आश्रम में देखिए 40 साल से हूँ, कभी बाहर नहीं गया हूँ, मैं तो बाहर खाना भी नहीं खाने जाता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ भगवान। अच्छा यही है बस, वेट। दूसरा जो टेयर करता है आपके अंदर, वो केवल वे चीज़ें दिखाएगा पॉइंट आउट करके जो गलतियाँ हैं, और कहेगा देखो तुम ऐसे। वो कुछ लोग होते हैं ना जो केवल वो दाग को देखते हैं, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो केवल आपके डिफेक्ट देख रहे हैं, एडवर्स फोर्सेस का खेल, और की तो बात ही छोड़ो, फिर इमिटेट करने वाले। तो इसलिए ये काम कोई नहीं कर सकता है। श्री अरविंद ने ये जो 4 द्वार की मैंने बात की, इसमें एक चीज नहीं कही है श्री अरविंद ने जो प्रचलित हो रही है। इस योग में मां के अन्यत्र कोई और गुरु नहीं है। ये बहुत कई बार मुझे भी पीड़ा होती है, कभी कभी देखता हूँ ऐसे एडवर्टाइजमेंट की कोई इस योग में आपको योग करना सिखाएगा, जो कुछ है सब बहुत स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है, कोई और इसमें बिचौलिया नहीं है। ऑफकोर्स शेरविन ने चूंकि सिंथेसिस ऑफ योग में ये लिख दिया है कि एक ह्यूमन हो सकता है आपका, लेकिन वो ह्यूमन कौन होना चाहिए जो जानता है कि वो भी एक बच्चा है अमंग चिल्ड्रेन। जिस दिन कोई ह्यूमन ये समझता है, और ऐसे लोग हुए हैं, बहुत हुए हैं, इसलिए ये स्पष्ट करना आवश्यक है, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, जो गुरु के रूप में, और उन्होंने इनकरेज किया इस चीज को, टेंडेंसी को. अगेन ये चीज बड़ी सुंदर थी छुट नारायण जी की. वो अपना फुल पैंट पहन के, शर्ट पहन के, तो एक बार उन्होंने मुझे बताया, धोती एक दिन मैंने देखा बर्थडे पर, मैंने कहा बड़ी जचती है आप पर, कहते हैं हाँ लेकिन हम नहीं पहनते हैं, क्योंकि अगर हम धोती वोती पहनेंगे लोग पाँव वाँव छूना शुरू कर देते हैं, गुरु जैसे बना देते हैं. आई नो पीपल हियर जो इसको डिफेंस के रूप में, वो साधु बच्चा नहीं बनते हैं, बाहर से अगर आप देखेंगे तो लगे अरे ये तो कैजुअल, वो कैजुअल लुक के पीछे ये सत्य है, ये भी एक सत्य है कि कहीं एक गुरुडम ना शुरू हो. प्रणवदा ने इसकी बात की. तो इस योग में कोई बड़ा साधक, आपने उससे हेल्प ले ली, कोई बात पूछ ली, वो एक अलग बात है. लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो गुरु है या माता जी का स्थान ले रहा है, तो ये बहुत डेंजरस है. उसके लिए तो है, वो तो ठीक है, उसकी अपनी समस्या है, लेकिन उसके लिए भी जो उनको गुरु बना रहा है, क्योंकि ये योग एक लाइन पर नहीं चलता है. एक के साथ माँ एक तरह से डील करती है, दूसरे के साथ सबकी समस्या अलग है, सबकी संभावनाएं अलग है, सबकी चेष्टाएं अलग हैं. तो हर एक व्यक्ति को माँ उसके हिसाब से ले जाती है. इसलिए चूंकि ये बहुआयामी, कई उस लेवल्स पर एक साथ चलता है, इसीलिए इस योग में केवल और केवल माँ के प्रति उद्घाटन. अब मेरा तो रुकने का टिप रिकॉर्डर ऑन हो गया, लेकिन आई विल रीड समथिंग. मेरा पढ़ने का मन कर रहा है बहुत सुंदर, कि भाई खुलने का अर्थ क्या है. सत्य निष्ठा आवश्यक है. खुलने का अर्थ ये नहीं है कि मैं खुल गया हूँ माँ के प्रति, मैं माँ को मानता हूँ कि माँ है. उद्घाटित कौन करेगा? तो जब सत्य निष्ठा नहीं है तो हम उद्घाटित कैसे करेंगे? और जैसी बात हुई, माँ कर सकती हैं चिरहरण, लेकिन फिर चिरहरण पसंद नहीं आएगा कि माँ मैं तो बहुत अच्छा सोचता था आपने आपको, माँ ये क्या कर दिया आपने. कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि उनको यहाँ आने से ये प्रॉब्लम हो गई है. ये मूर्खता के ऊपर एक महामूर्खता. प्रॉब्लम थी, अनकवर हो गई, क्योंकि कवर बाहर देखिए. आप कई बार लोग पूछते हैं कि आश्रम में कई बार हम मिले वो व्यक्ति ऐसा वैसा, बाहर हमको बड़े अच्छे लोग मिले. मैंने कहा हाँ, कवर्ड अप मेकअप यही होता है, पूरी दुनिया मेकअप पे चलती है. आप देखिए, वी आर ऑल लाइक सेल्समैन सेलिंग ईच अदर. नमस्ते, आइए, प्लीज आइए, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे. जैसे दूसरे कमरे में गए, हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, इनको क्यों आप बुला लिया, इसी समय आना था, फिर बाहर आए, फिर बाहर आकर के वो बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं. ये है ना संसार, इसको बोलते हैं सच्चाई. यहाँ पर फर्क इतना है कि कवर हट गया तो गुस्सा करके बोल देता है, जस्टिफाइड नहीं है. पहले वो कॉन्शियस होता है, फिर वो उसको चेंज करता है. और मैंने देखा यहाँ पे ऐसे लोगों से मिला हूँ, एक दिन मैंने किसी को कुछ कह दिया कि आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए, आप गेट पर हैं, उन्होंने भी कुछ बात हो गई. फिर उसके बाद मुझे लगा कि अरे मुझे ऐसे शायद नहीं बोलना चाहिए था अभी इतने. दूसरे दिन वो बिल्कुल नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल. आपने उसको रियलाइज किया. शेरविन 12 ईयर्स में कहते हैं ना कि जब चंपकलाल जी और आई थिंक निरुद्धा के बीच और किसके बीच में, दोनों के बीच थोड़ी झड़प हुई, तो शेरविन से किसी ने कहा, कहते हाँ हाँ दोनों तो आग्नेय हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन फायर मीट्स फायर. तो ये जो शमन होती है चीजें, पहले हमारे अंदर से निकलती हैं. तो अगर आपके अंदर सत्य निष्ठा नहीं है, कवरिंग की टेंडेंसी है, जस्टिफाई करने की, तो फिर भगवान कैसे काम करते हैं? माँ कहती हैं अगर कोई सिंसियर है तो मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ. एंड इफ यू आर नॉट सिंसियर एंड डोंट वांट टू बिकम सिंसियर, सिंसियर नहीं है ठीक है, लेकिन आप बनना नहीं चाहते, देन आई कैन नॉट हेल्प सच ए पर्सन. ये क्यों कह रही है माँ? सिंसियरिटी का मतलब क्या है माँ? यही बिकमिंग कॉन्शियस, इसी को माँ कहती है पहला स्टेप. सिंसेरिटी के लिए क्या आवश्यक है? माँ कहती है मन प्राण को शांत करना. जो हर समय उत्तेजित है, हर समय उद्विग्नता में है, वो क्या देखेगा अपने अंदर? जब पानी खूब हिल रहा हो तो उसके अंदर क्या है आप कैसे देखोगे? उसका रंग भी आपको नहीं पता चलेगा, ऊपर ऊपर से आपको वेव्स दिख रही हैं. तो शांत होना, जितना हम शांत होंगे उतना खुलेंगे, जितना हम उद्विग्न होंगे उतना अधिक हमारे अंदर समस्या बढ़ेगी। तो हमें शांत होना है, पहली चीज माँ ये कहती हैं, कठिनाई के समय भी हर अवस्था में। फिर एक चीज और बताती हैं, ये शेरविंद का पत्र है, अद्भुत है। भगवान द्वारा सब कुछ, पेज 27 पर, भगवान द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। अब देखिए इस योग में क्या करना है, भगवान करेंगे। हृदय और स्वभाव शुद्ध किए जा सकते हैं, आंतरिक चेतना जागृत की जा सकती है तथा पर्दे दूर किए जा सकते हैं। यदि, अब यहां पर एक यदि है, यदि कोई श्रद्धा भरोसा और विश्वास के साथ अपने को भगवान के हाथों में अर्पण कर दे, लगता हो ये तो बड़ा अच्छा है, सिंपल, अभी माँ बताएंगी अर्पण क्या होता है। और यदि कोई तुरंत पूर्ण रूप से ऐसा ना कर सके, फिर भी जितना अधिक वह ऐसा कर सकेगा उतना ही अधिक आंतरिक सहायता और पथ प्रदर्शन उसे प्राप्त होगा तथा उसके अंदर भगवान का अनुभव बढ़ेगा। यदि संदेहशील मन कम सक्रिय हो जाए, ये भी नहीं कह रहे कि डाउट खत्म हो जाए, कम सक्रिय, डाउट एक्टिव, शक्की स्वभाव, ये सच में होगा, माँ करेंगी, ऐसे होगा वैसे होगा, यदि वो कम सक्रिय हो जाए, और विनम्रता बहुत आवश्यक है। माँ ऐसा क्यों कर रही हैं, शायद ऐसे नहीं, कभी कभी लोग ऐसी बात लिखते हैं, किसी ने हाल में लिख करके पूछा कि श्री अरविंद ने ये लिखा है, जस्ट इमेजिन, श्री अरविंद का डिसाइपल है, नाम के लिए पूछता है, श्री अरविंद ने ये लिखा है, क्या आप इसको मानते हैं? मैंने कहा, भैया तुम तो कुएं में गिरोगे, मेरे लिए तो खाई खोद रहे हो, मानते हैं? श्री अरविंद ने लिखा है, ये एनालिसिस का विषय है, श्री अरविंद ने जो लिखा है वही सत्य है। हाँ ये जरूर है कि मुझे समझ ना आ रहा हो, तो मैं समझने की चेष्टा करूंगा, मैंने तो यही तरीका अपनाया, उनकी पूरे जो साहित्य पढ़ा है एक क्षण को भी ये नहीं कि ये लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, कि मैं अंदर ये था कि आप सही सत्य है ये सब कुछ, कहीं नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे समझा दीजिए, तत्क्षण विद इन अ डे ही विल एक्सप्लेन, कई बार इमीडिएटली उसका जो रियल सेंस है वो प्रकट होता था, लेकिन नहीं ऐसा क्यों लिखा है, ये शायद उस समय के लिए, कई लोग ऐसे विवाद विवाद करते हैं, उस समय के लिए होगा, अभी ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ये, लेकिन फला फला गुरु जी ने कुछ और लिखा है, ये सब इज ब्लॉकिंग द पाथ, अपने लिए अनेकों अनेकों कठिनाइयां बढ़ाते जाना है। तो यहां पर वो कहते हैं, यदि विनम्रता तथा समर्पण का संकल्प बढ़े, ये भी नहीं कह रहे कि संकल्प कि मां मैं विनम्र होना चाहता हूं, समर्पण करना चाहता हूं, तो ऐसा करना पूर्णतः संभव हो सकता है, तब एकमात्र इस वस्तु के सिवा किसी दूसरी शक्ति और तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। शॉर्टकट, इजी पाथ, फ्रेंच विदाउट टीयर्स, योगा मेड इजी, ये है, ये डाउटिंग माइंड, ये सब अगर शांत हो, श्रद्धा हो, खुल जाए, वो कैसे करेंगी, कितने समय में करेंगी, ये सब उन पर छोड़ दें। इसी बात को मां इस प्रकार से कहती हैं, सबसे महत्वपूर्ण समर्पण है तुम्हारे चरित्र का। अरे हम सब तो बड़े सच्चरित्र लोग हैं, चरित्र हम सब सारी चरित्रवान हैं। भगवान कहते हैं, आओ अभी तुमको हमाम ले चलते हैं, स्नान ग्रह, वहां पे पता चलता है तुम्हारी जीवन विधि का समर्पण। नहीं हम यही करेंगे, बिना नहाए हम नहीं करेंगे पूजा तो भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। अरे भाई उठ के करो, नहाते हुए भी करो, नहाने के बाद भी करो, निषेध है कोई चीज? यदि तुम अपनी एकदम निजी प्रकृति का समर्पण ना कर सको तो यह प्रकृति कभी परिवर्तित नहीं होगी। ऐसे ऐसे व्यक्ति लोग एक एक कहते ना पाले रखते हैं अपने अंदर, और हम सब, क्योंकि हम सब एक बैकग्राउंड से आए हैं, नहीं ये नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, एकादशी व्रत नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, ये नहीं करेंगे, अब कई डेटा में बता दो भैया देखो करवा चौथ व्रत सभी महिलाएं करती हैं, लेकिन ऐसा होता है कई बार कि उनके पत्नी पति पहले चले जाते हैं, होता है, आप एक्चुअल डेटा स्टडी करके, इट्स ओके। समर्पण क्या होता है, भगवान जैसे तुम चाहोगे, और ये सब नहीं है इस योग में कि मैं ये करूंगा तभी, आपको करना है करिए, आपकी मर्जी है, बट डोंट एसोसिएटेड विद दिस योग। शेरविंद ने यहां तक कहा है कि दोज, माता जी ने कहा है, दोज हु वांट टू वर्शिप द गॉड्स दे मे कंटिन्यू टू डू सो बट दे मस्ट नो दैट दिस हैज नथिंग टू डू दिस वर्शिप ऑफ द गॉड्स. यानी भगवान देवताओं को मानने की बात नहीं है, वर्शिप ऑफ द गॉड्स हैज नथिंग टू डू विद द सुपरामेंटल योग. होती है, यहां भी ये लोग हैं गणपति पूजा के दिन सजाते हैं. नो, गणपति इज अ वेरी डियर फ्रेंड. ये उनकी लॉजिक होती है. माता जी ने, अच्छा माता जी ने क्या, माता जी के सब बच्चे हैं, माता जी असुर राक्षस को भी अपने पास बुला के कन्वर्ट करती थी. बोलोगे हम असुरी बन जाएं, माता जी के पास जाएंगे, व्हाट इज दिस लॉजिक. तो यहां वो कहती है, तुम किसी विशेष तरीके से समझते हो, हाँ, तुम अपनी एकदम निजी प्रकृति का समर्पण ना करो तो ये प्रकृति कभी परिवर्तित नहीं होगी. तुम किसी विशेष तरीके से समझते हो, विशेष ढंगों से प्रतिक्रिया करते हो, विशेष रूपों से अनुभव करते हो, लगभग विशेष रीतियों से प्रगति करते हो, और सबसे बढ़कर एक विशेष दृष्टि से जीवन की ओर दृष्टिपात करते और उससे विशेष वस्तुओं को अपना करते हो. हाँ, बस इसे ही तुम्हें समर्पित करना होगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एक बार डिबेट चला क्योंकि डाइनिंग रूम में दूध दिया जाता है तीनों टाइम. तो एक बीच में आया कि दूध पीने से ये क्या, क्यों पुस्तक आई थी, फिर दूध क्या भूल गया मैं, चाइनीज स्टडी वट एवर इट वॉज, सम नॉनसेंस. तो दूध, तो डाइनिंग रूम में दूध, यहाँ के लोगों ने भी कुछ वो पुस्तक को कोट करके दूध की जगह मेरे से पूछा. मैंने कहा भाई देखो, डाइनिंग रूम में देती है, माँ का प्रसाद है. मूर्खों मैं जो इस पर डिबेट करूंगा, दिमाग को अपने लगाऊंगा. इस दूध को पी पी करके तो लोग नलनीदा, चंपकलाल जी, पवित्रदा कहाँ कहाँ चले गए. अब मैं चाइनीज स्टडी और किसकी स्टडी, अब ये इवन हियर पीपल डेवलप दिस. अब देखिए समर्पण क्या होता है, विशेष रीति. कई बार लोग पूछते हैं आश्रम में ब्रेड ही क्यों मिलती है, ये क्यों, चपाती भी बना सकते हैं. तो हाँ बना सकते हैं, बनाना चाहें तो मशीन भी ऐसी मिलती है, तो मिलती है, तो करते क्यों नहीं. मैंने कहा इसलिए कि आप समर्पण सीख सको. ये हुआ है एक बार, वेद प्रकाश जी बता रहे थे कि किसी ने कंप्लेंट किया. वेद प्रकाश जी थे ना, उन्होंने खाना इस तरह का जो पहले तो बनती थी चीज़ें, किसी ने कंप्लेंट किया, कहा माँ हम थोड़ा चटपटा, थोड़ी ऐसी चीज़ें वैसी चीज़ें. पहले उन्होंने वेद प्रकाश जी से कहा, वेद प्रकाश जी ने कहा यहाँ तुम चाट चटोरे बनने के लिए नहीं आए हो जो डाइनिंग. तो लोगों को लगा थोड़े, तो उन्होंने माता जी से कहा, माता जी ने कहा ठीक ही तो कह रहे हैं, खत्म बात. अब देखिए समर्पण क्या होता है. अब यहाँ जीवन शैली में ही आपका समर्पण हो जाएगा. आपको एक समय है जिसमें जाना है काम पे, काम हो या ना हो बैठना है अपने पोस्ट पे, बहुत साधना चाहिए इसमें. हम लोग बड़े रेस्टलेस लोग हैं. मुझे यही होती थी, मैं चला गया, खोल लिया, कोई कस्टमर नहीं है मार्बलिंग डिपार्टमेंट में. तो मैंने कहा ये प्रवृत्ति से निवृत्ति सिखा रहे भगवान. फिर मैंने किताबें खोल के पढ़नी शुरू की, श्री अरविंद के कलेक्टेड वर्क्स थे. उन्होंने कहा ना यहाँ ये अलाउड नहीं है, यहाँ तुमको बैठना है, कोई कस्टमर आए. मैंने कहा ओके, ये भी ट्रेनिंग है एक अच्छी खासी. तो ये समर्पण जिस भी तरह, आखे राम हमारे यहाँ ये है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना थी. एक दिन भूई पर लौटना, एक दिन कहो तो मुतियन मांग जड़ावा, कहो छिटकारा केस. ये नहीं कि मुझे सन्यासी बनना है. अगर आपको ये अवस्था, इसी को समता की बात कही गई है. अंत में कुछ प्रश्नोत्तर हैं. ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पर मुझे समय की सीमा पता नहीं चलेगी, लेकिन अभी सावित्री का भी सत्संग है 20 मिनट बाद, तो माँ के साथ कुछ प्रश्नोत्तर हैं. तो माँ कहती हैं, दिव्य माँ, ये पेज नंबर 31 पर है, मैं निम्न बातों को जानना चाहता हूँ. क्या मेरे अंदर इस मार्ग के लिए क्षमता और संभावनाएं हैं? माँ कहती हैं, यह कोई प्रश्न नहीं है. प्रश्न यह है कि क्या तुम्हारे अंदर आवश्यक अभीप्सा, दृढ़ निश्चय और अध्यवसाय है? दृढ़ निश्चय आवश्यक है. और क्या तुम अपनी अभीप्सा की तीव्रता और आग्रह के द्वारा अपनी सत्ता के समस्त अंगों को पुकार का उत्तर देने के लिए और समर्पण के लिए एक कर सकते हो, कितने भी साल लगे? Never to give up. फिर किसी ने पूछा माँ से, मैं घर लौटने के बाद अपनी साधना कैसे जारी रखूं? लोग आते थे, कई डिसाइपल्स अभी भी हैं और पहले भी थे, श्री अरविंद के समय भी। लोगों को ये लगता है केवल जो आश्रमाइट थे वो डिसाइपल थे, नहीं, श्री अरविंद के समय भी कुछ डिसाइपल थे जिन्होंने आश्रम ज्वाइन किया था, कुछ यहाँ रहते थे, अपना बिजनेस करते थे, लेकिन वो आश्रमाइट थे सो कॉल्ड, और कुछ थे जो घर जाके वापस आते थे, जाते थे और योग साधना करते थे। ये तब की बात है। तो माँ वापस जाने के बाद क्या करो, माँ कहती हैं अपने आप को शांत करो और अंदर में माँ को देखो और अनुभव करो। फिर चैत्य पुरुष कैसे खुलता है, आधार में चैत्य और प्राणिक सत्ताओं को कैसे पहचाना जाए, तो माँ कहती है अभीप्सा की शक्ति और माँ की कृपा से। अब बड़ी सुंदर बातें हैं, कुछ हो जाए, मेरे परिवार में इतने लोग हैं, स्वयं मैं, मेरी पत्नी, दो बेटे और एक बेटा बेटी सॉरी, मेरी यहां आकर रहने की इच्छा है, लेकिन मेरी पत्नी को यह स्वीकार नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? कई लोगों के प्रश्न है। मां का उत्तर है अनासक्ति, डिटैचमेंट, अनासक्ति। कई जगहों पर उन्होंने अपने दैनंदिनी जीवन में मैं उदास हो जाता हूं और काम क्रोध आदि निम्न शक्तियों का शिकार बन जाता हूं। मैं आपसे सहायता और संरक्षण के लिए विनम्र प्रार्थना करता हूं। मां कहती हैं अनासक्ति, डिटैचमेंट, इनसे भी। मेरी पत्नी फला फला देवी की भक्त हैं, उनका हृदय उनके आगे खुलता है, लेकिन वो सांसारिक बंधनों से पीछा नहीं छोड़ सकती। कृपया उनकी सहायता करें, मैं उसका फोटो भेजूं। मां कहती तुम चाहो तो डिसाइपल ये है, मांग सकते हो उनके। मां कहती ठीक है भेजो, प्रे कर सको। और इस तरह से चलता रहता है। फिर मां अंत, जिसके बाद हम लोग रुकेंगे, माता जी की ओर कैसे खुला जाए। निम्नलिखित उपाय हैं, हमेशा या समय समय पर आपको याद करना अच्छा है। मां कहती है अच्छा है, इट इज गुड। आपका नाम जपना सहायक है, तो देखिए इट इज हेल्पफुल, सहायक है। ध्यान की सहायता से, अगर ध्यान करने की आदत ना हो तो ज्यादा कठिन है। कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। उन लोगों के साथ आपके बारे में बातचीत करके जो आपका मान करते और आपसे प्रेम करते हैं, खतरनाक है। मां होता है ना, सेंटर में होता है, मेडिटेशन हुआ, यहां भी आते हैं, दर्शन डे मेडिटेशन हुआ, उसके बाद देखिए क्या अवस्था होती है। और कैसे हैं, कैसे चल रहा है, सेलफोन शुरू होते हैं, चलो आनंद भवन चलते हैं, आप जाइए खाना खाने। लेकिन एक ये कोई पार्टी नहीं हो रही है कि देश विदेश के लोग आके पार्टी करने जा रहे हैं। तो वो कहती माँ खतरनाक है, क्योंकि बातचीत करते समय कुछ उटपटांग या कम से कम बेकार चीजें कही जा सकती हैं, घर द्वार इसी में लोग उलझे रहते हैं। आपकी किताबें पढ़कर, माँ कहती है अच्छा है, आपके बारे में विचार करने में समय लगाकर बहुत अच्छा है। मेडिटेशन को अलग, जस्ट थिंकिंग अबाउट द मदर, वेरी गुड। सच्ची निष्कपट प्रार्थना से अच्छा है। आरंभ करने के लिए तीन अनिवार्य चीजें, समस्त सत्ता और उसके सारे क्रियाकलाप में संपूर्ण सच्चाई और निष्कपटता। दुनिया को जो भी कर रहे हैं धोखा दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, भगवान को धोखा नहीं देना है। हम जैसे हैं भगवान के सामने वैसे, कुछ भी किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं। लेकिन आप जो हैं, ठीक है, संसार में आपको ये जरूरी नहीं है कि डंके पर बोला जाए मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, वैसा क्यों हूं, नहीं। आप जो हैं हैं, आपको पता है, उसको आप भगवान के प्रति खोल दीजिए। कुछ भी बचाए बिना पूर्ण आत्मसमर्पण, कि माँ मैंने अपना तो समर्पण कर दिया, लेकिन वो ये वो 10 कंडीशन, अपने ऊपर धीरज के साथ काम करना, धीरज बहुत आवश्यक है, पेशेंस, और साथ ही पूर्ण निष्कंप शांति और समता को निरंतर हस्तगत करते रहना। जय मां।